बहुत बहुत शुक्रिया इलामा इब्राहिम साहब, आपका क्या आपने इमैनुअल भाई के सवाल का जवाब दिया। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक सवाल आजकल बारहा उठ रहा है इलामा साहब के, हमारे मुसलमान भाई एक अक्सर एतराज़ करते हैं और वो ये फरमाते हैं कि जनाब मसीह ने जो अपनी ज़ात के बारे में जो दावे फरमाए हैं वो उनके बारे में कुछ काफ़ी परेशानी का बाइस हैं। मसलन जनाब मसीह का इरशाद है कि राहक और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी कि सरात मुस्तकीम मैं हूँ, या दुनिया का नूर मैं हूँ, या मेरे वसीले के बगैर या मेरे तवस्सुत के बगैर कोई परवरदिगार आलम तक नहीं पहुँच सकता। तो आप प्लीज़ इलामा साहब, आप इन सवालात का ज़रा जवाब दीजिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाइयों के जहन में जो गलत तस्वुरात बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इन सवालों के जवाब के बाद उनके गलत तस्वुरातों का जो है वो किला कमा हो जाएगा। तो जनाब बड़ी नवाजिश होगी आपकी, बहुत शुक्रिया।
कि जनाब मसीह के जो ये दावे हैं कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई शख्स खुदा तक नहीं आ सकता, जा सकता नहीं है, आ सकता वह अल्फाज जो हैं नहीं आ सकता, और आसमान के नीचे और कोई नाम दूसरा है ही नहीं, इसके बारे में सिर्फ दो ही रद्द अमल हो सकते हैं, बल्कि तीन कह लीजिए, क्योंकि सी एस लुईस ने इस पर बहुत अच्छी बहस की। उन्होंने कहा कि इस किस्म के दावे करने वाला शख्स या तो बहुत ही संजीदगी से दावे कर रहा है और जो कुछ कह रहा है उस पर उसका ईमान है कि मैं ये हूं इसलिए कह रहा है, या वो शख्स बिल्कुल फातरुल अकल है, पागल है, उसे मालूम ही नहीं है कि मैं किस किस्म की बकवास कर रहा हूं, क्योंकि ये तो खुदाई दावे हैं इस किस्म की बातें करना, या तीसरा एक इम्कान जो है वो इस बात का है कि साहब किसी ने उनसे ये बातें मनसूब कर दी हो, उस शरीफ आदमी ने कभी ये बात ही ना की हो। तो हम उल्टे एक बात चलते हैं कि फर्ज कीजिए कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि किसी ने मनसूब कर दिया, तो इसका जवाब एक मैं आपको छोटा सा ये देता हूं कि इससे हटके, वो ये है कि शेख रजी ने हजरत अली के खुतबात का मजमुआ नहजुल बलागा जमा किया, कुछ लोगों ने उस पर एतराजात किए, एक साहब ने एतराज जो किया उनका यह कहना था कि शेख रजी ने यह खुद ही खुतबे लिखे और लिख के हजरत अली से मनसूब कर दिए, और उन्होंने जो जवाब दिए वो तो दिए, लेकिन एक ईसाई पौलुस सलामा ने जो जवाब दिया उसने कहा तो फिर अगर यह बात है तो फिर शेख रजी का मुकाम जो है वह हजरत अली से बुलंद है, क्योंकि अगर शेख रजी ऐसे खुतबे दे सकता है कि उन जैसे कोई नहीं दे सका तो फिर अगर हजरत अली के खुतबे होते फिर तो मुझे सजदे ही करना पड़ते उनको। तो अब अगर किसी ने ये अच्छी बातें ऐसी मनसूब कर दी हैं मसीह की जात से, तो जिसने मनसूब किया है कम से कम वो मसीह से बड़ा आदमी होगा, क्योंकि किसी और ने पहले इस उनकी बातें मनसूब करने की कोशिश नहीं की, या यह कि हजरत मसीह बिल्कुल फातर और अकल थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि मैं कह क्या रहा हूं, या फिर यह कि वो जानते थे कि क्या है। अब इस किस्म के दावे करने के एक तो यह कि इनका मफहूम क्या है, और एक यह है कि इन दावों से हासिल क्या हो रहा है। पहली बात आप जहन में रखिए कि उन्होंने ये दावे किए कहां, अगर वो जाके यूनान में ये दावा करते तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं था, क्योंकि यूनान में बहुत सारे खुदा थे, गली गली में खुदा थे, थोक के हिसाब से थे, वहां पे इतने खुदाओं में अगर एक और खुदा आ जाता तो कोई सेहत पे किसी का असर नहीं पड़ रहा था, जैसे जैसे आप हिंदुस्तान में जो है लोगों का ईसाई हो जाना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं के लिए जहां वो 23 करोड़ खुदा मान रहा है, उन 23 करोड़ में एक और अगर ईसा भी खुदा हो, भगवान एक वो भी हो, तो उसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा, मुसलमान नहीं होकर देता ईसाई, इसलिए कि वो इतना मुवाहिद है कि एक खुदा के अलावा दूसरा कबूल ही नहीं कर सकता। तो वो यहूदियों से ये बात कह रहे थे, गैर यहूदियों से नहीं कह रहे थे, वो यहूदी जो कि मुवाहिद थे, जो एक ही खुदा के मानने वाले थे और हर दिन ये कलमा दोहराते थे और अब तक दोहराते चले आ रहे हैं, क्या बनी इसराइल सुन लो अच्छी तरह से कि मैं खुदामंद खुदा तुम्हारा खुदा एक ही खुदा हूं, खुदा वाहिद हूं, वह भी दोहरा रहे हैं। तो उनके सामने इस किस्म के दावे करना अपनी मुसीबत को दावत देने के बराबर था कि आप आयल मुझे मार, तो वो तो कहेंगे यार ये तो शिर्क की बदतरीन मिसाल है। आप असल में कहना क्या चाह रहे थे, एक आम आदमी तो अगर ऐसे दावे करता है तो जाहिर है कि वो पागल है, नबी भी ऐसे दावे नहीं करता, वो ये तो कह सकता है कि मैं میری دعا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلائیں، صراط مستقیم پر چلائیں. آپ بھی دعا مانگا کریں، یہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ صراط مستقیم میں ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری زندگی کا انحصار مجھ پر ہے، کیونکہ میں زندگی ہوں کا مطلب یہی ہے، اور میں قیامت ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے نہ مانا تو قیامت کے دن تمہارے اوپر قیامت آ جائے گی، سیدھی سی بات. تو ایسے دعوے کرنے والے کو کوئی یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ہوں بھی یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب مسیح اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ جن لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے. اگر وہ تھے جو کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ان کے لیے یہ کہنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں تھے تو واقعی نہ صرف یہ کہ عجیب و غریب ہے بلکہ بہت بڑا کفر ہے، اتنا بڑا شرک ہے جو ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرما سکتے. آپ کے وہ جتنے بھی دعوے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ یہودیوں کے سامنے کیے گئے تھے، موحدین کے سامنے، دوسروں کے سامنے نہیں کیے گئے تھے. وہاں سے جو بات ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری ٹرمینالوجی، یہ ساری اصطلاحات وہ تھیں جن سے وہ پہلے سے واقف تھے. آپ نے کوئی الفاظ نئے ایجاد نہیں کیے تھے، زندگی کے لفظ سے وہ واقف تھے، قیامت کے لفظ سے وہ واقف تھے، صراط مستقیم سے وہ واقف تھے، یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھیں. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ صراط مستقیم کسی ذات کا نام نہیں ہے، یہ صرف ہمارا عمل ہے جو کہ ہمیں صراط مستقیم پر لے جاتا ہے. اور آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ماڈل نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، تو صراط مستقیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کوئی اس پہ چل کے دکھائے نہیں، اور وہ خود صراط مستقیم کی کیفیت ہو اس کی، کہ کہیں وہ ٹیڑھا نہ ہو، ترچھا نہ ہو، ادھر نہ لے جائے، ادھر نہ لے جائے، منزل تک پہنچا دے. اسی طرح سے جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں زندگی ہوں تو انہیں معلوم تھا، یہودیوں کو، کہ صاحب یہ پہلے انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب پروردگار نے انسان کو پیدا کیا تھا تو وہ صرف مٹی کا ایک پتلا تھا، اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی. جب پروردگار نے اس میں جان ڈال دی تو پھر وہ جیتا جاگتا انسان ہوا، کہ میرے بغیر تمہاری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، تم آدم تو ہو لیکن صرف آدم کا بے جان پتلا ہو. پورا انسان بننے کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ وہ زندگی میں عطا کروں. اسی طرح سے قیامت کے لیے ان کا تصور تھا کہ صاحب ایک دن آنے والا ہے جب ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پہلے یہ تھا کہ مرے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو پروردگار زندہ کریں گے اور اس کے بعد حساب کتاب لیں گے. لیکن جو آدمی مرا ہوا زندہ ہو ہی نہ سکتا ہو، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یعنی ہمارے یہاں جو تصور ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ صاحب قبر میں جو ہے اس میں سے نکالے جائیں گے، لیکن آدم خور قبائل بھی تو موجود ہیں جو کھا جاتے ہیں، اس کی تو قبر دوسرے آدمی کا پیٹ ہے، پھر اس کو کوئی اور کھا گیا، اس کا پیٹ کچھ اور ہو گیا، اس کی تو قبریں بدلتی چلی گئی، جس کو آپ نے جلا کے اس کی خاک اڑا دی یا گنگا میں بہا دی، اس کی قبر کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ تو ذرات الگ الگ ہو گئے. تو کوئی ایسی ذات چاہیے جو اس کو کسی طرح سے دوبارہ جو ہے وہ وجود میں لا سکے، اور ظاہر ہے کہ ایسی ذات سوائے پروردگار کی اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو کہ جس نے پہلے نیست سے ہست کیا اب وہ دوبارہ بھی نیست سے ہست وہی کر سکتی ہے. تو آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ میں ہوں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ دعوے کرنے کو کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے کہ دعویٰ سچا بھی ہے. تو اب آپ کے جتنے بھی دعوے تھے اب ہم ان میں سے ایک ایک کو دیکھتے ہیں. کہ آپ نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ صاحب میں راہ حق ہوں، صراط مستقیم ہوں، اس کے لیے آپ نے چیلنج کیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ میں غلط راستے پر چلا ہوں تو میں حاضر ہوں. لوگوں نے پتھر تو مارنے کو اٹھا لیے لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. تو آپ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ میں کبھی غلط راستے پر نہیں چلا ہوں. لیکن ایک بہت ٹیڑھا مسئلہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ میں بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھے اس زندگی کے بارے میں اس وقت سے معلوم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالنے سے پہلے کا مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کتنے جھوٹ بولے تھے، کس کی چیزیں لے کے کھا گیا، کیا کیا تھا، چوری کی. تو جب آپ نے یہ کہا کہ کوئی ثابت کر دے تو ظاہر ہے کہ بڑے بوڑھے بھی وہاں پہ موجود تھے، بڈھے بڈھے بیٹھے ہوئے تھے عالم، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بچپن میں تم نے یہ کیا تھا، تم فلاں کی ٹافی لے کے بھاگ گئے تھے. स्कूल में तुमने यह हरकत की थी, लेकिन आपको पूरा यह यकीन था कि उस वक्त भी मैंने ऐसा नहीं किया, और हम में से कोई आदमी अपने बचपन के बारे में दावा नहीं कर सकता, और जो बचपन के बारे में दावा करता है वो जात होनी चाहिए जिसे हर लम्हे का इल्म हो कि किस लम्हे में मैंने क्या किया है। दूसरा आपका दावा यह था कि मैं जिंदगी हूं। आप फौरन कह सकते हैं कि आपका दावा तो यह था, लेकिन आपको तो खुद मौत आ गई, आपको तो मसलूब कर दिया गया, यह अजीबोगरीब जिंदगी है। लेकिन आपका मतलब यह नहीं था, क्योंकि दूसरी जगह आपने यह कहा कि जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो मरेंगे नहीं, लेकिन हम जानते हैं सारे मर जाते हैं, और ये तो नहीं होता। उसका मफहूम यही था कि साहब हमारी जिंदगी का इन्हिसार उसी तरह से जैसे खुदा ने आपके अंदर रूह फूंकी या सांस आपको अता किया तो उससे आप सांस लेने लग गए, तो इंसान की जिंदगी का दारो मदार जो है वो कुर्बत खुदावंदी पर है। जन्नत नाम है कुर्ब खुदावंदी का और जहन्नम नाम है खुदा से दूरी का। यह जिंदगी है यही कि अगर खुदा के कुर्बत में गुजरती है तो जिंदगी है, और अगर नहीं गुजरती तो शर्मिंदगी है, जिंदगी नहीं है। तो जिन लोगों ने आपके जो आपके साथ चले थे उनकी जिंदगियों पे जब हम देखते हैं तो हमें मालूम यह होता है कि उनमें से कोई भी इस मेयार पे पूरा नहीं उतर रहा। अजीब बात यह है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाता है सारे छोड़ के भाग लेते हैं, जो एक बहुत हिम्मत वाला होता है पीछे चलता है वो भी इनकार करके बैठ जाता है कि मैं नहीं जानता कि कौन है, मुझे क्या मालूम कौन है भाई, कहां फंस गए। एक जो है उनमें से वो कहता है कि अच्छा भाई कुछ पैसे दे दो तो मैं पकड़वा देता हूं। किरदार तो आपने उन लोगों का ये पैदा किया, लेकिन आप उसके बाद देखते हैं कि जो उनमें से एक जो मर गया उसको छोड़ दीजिए, जो बाकी 11 रहे, उन 11 का अमल जो था वो ये था कि आज हम ये जानते हैं कि ये किताब हम तक कैसे पहुंची है। अगर वो 11 वही कुछ रह जाते जो वो पहले थे तो आज हम तक ये बात एक भी नहीं पहुंचती। तो आपने उन लोगों की जिंदगियां बदल दी जो ऐसे लोग थे। अच्छे लोगों को लेके चलना और अच्छे लोगों की काबीना की बुनियाद पर हुकूमत कायम कर जाना ये कोई बड़ा काम नहीं है। नालायक लोग आपको मिले और उनकी बुनियाद पर आप एक हुकूमत कायम कर जाएं जो 2000 बरस से कायम हो, ये बहुत बड़ा हुआ है। फिर तीसरा आपका दावा यह था कि साहब मैं कयामत हूं, कि साहब तुम्हारी जिंदगी का जी उठने का दारोमदार इसी पर है। ये वो था, ऐसी बात थी कि जिसके बारे में कोई भी शख्स दावा कर सकता है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें से कयामत किसी ने देखी नहीं है, मरे हुए शख्स को हमने जिंदा होते नहीं देखा। तो आपने मर के जिंदा होके दिखा दिया कि अगर मैं खुद मर के जिंदा हो सकता हूं तो तुम्हें भी जिंदा कर सकता हूं। तो सिर्फ आपने दावे नहीं किए, उसके साथ आपने सबूत बहम पहुंचाया। दावे इससे भी अच्छे अच्छे मौजूद हैं लोगों के, ये नहीं है कि दूसरे लोगों ने दावे नहीं किए, दावे मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसके लिए आपके पास दलील क्या है और सबूत क्या है। अगर ना तो दलील हो और ना ही सबूत हो। अब रह गया आपका वो कि साहब एक जगह एक और साहब ने कहा कि साहब आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं जिससे इंसान बच सकता हो। ये मैं फिर ये कहूंगा कि जब हजरत पतरस ने ये लफ्ज कहे तो यहूदियों से कहे थे ये जहन में रहे, जब वो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कहते हैं तो इसका मतलब होता है इस पूरी कायनात में, रूबे जमीन पर, और इस पूरी कायनात में वो कौन सा एक नाम है जो सब नामों से बड़ा है। किसी इंसान का नाम तो हो नहीं सकता। अगर आप शहनशाह भी ढूंढ के ले आएंगे तो उसका भी कोई बाप होगा, जाहिर है कि जो उसका बाप शहनशाह था तो वो बेटे से तो बड़ा ही होगा ना। खुदा की जात एक ऐसी जात है जिससे बड़ा नाम कोई नहीं होता, कि ये वो जात है कि उनसे बढ़ के कोई नाम, यानी ये है कि ये वो है। अब अगर आप इन्हें नहीं मानते तो जाहिर है कि आपके तो कोई बेड़ा पार होने के बचने के इम्कान है ही नहीं। तो ये उनकी थोड़ी सी तशरीह भी है और ये आपके दावों के की सदाकत के बारे में अगर आप कुछ देखना चाहें। लफ्ज दुनिया एक तो बहुत मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है, एक तो दुनिया इस कायनात के लिए इस्तेमाल हुआ है कि साहब खुदा ने दुनिया बनाई, एक दुनिया अहले दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि वहां पर इस दुनिया से नहीं, कुर्रा अर्श से नहीं, बल्कि इस कुर्रा अर्श पर रहने वाले अफराद से। एक तीसरा मफहूम दुनिया का वो है कि दुनिया से दोस्ती जो है वो खुदा से दुश्मनी के बराबर है। वहां दुनिया से मुराद दुनियादारी है, वो दुनिया नहीं है, यानी इस दुनिया के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना जो लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके मुरतब किए हुए हैं। तो जब आपने ये कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं तो हम तीनों मफाहिम में ले लेते हैं। एक तो यह है कि साहब इस कायनात में अगर रोशनी है तो मेरे दम बदम से, यानी अगर आप दिन का वक्त है तो मैं आपके लिए सूरज का काम दे रहा हूं, रात का वक्त है तो चांद सितारे मैं हूं, कि मेरे बगैर आप चल नहीं सकते कहीं पर। और अगर अहले दुनिया है तो अहले दुनिया को ये रोशनी के अलावा अंदर की भी रोशनी चाहिए, यानी बसारत के साथ बसीरत भी चाहिए। और अगर ये वो दुनियादारी है, इस दुनिया में रहने का फन है, तो फिर एक फन मैं भी सिखाता हूं कि इस दुनिया में कैसे जिंदा रहा जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि फिर वही बात, कि यहूदियों से ये बात कही गई थी, जब यहूदी रोशनी का नाम लेता था तो उसकी क्या मुराद होती थी? वो बाकी छोटी छोटी रोशनियां हैं, ये छोटा एक रोशनी का है, एक छोटा नूर पैदा किया, एक बड़ा नूर पैदा किया, वो हमेशा उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। लेकिन खुदा के लिए वो नूरन अला नूर इस्तेमाल करते थे, कि वो जिसको नूरों का बाप कहा गया है याकूब के खत के उर्दू तर्जमे में, कि सारी रोशनियों का मंबा वही एक जात है, नूरन अला नूर। तो आप ये कह रहे थे कि मैं नूरन अला नूर हूं, जहां मैं नहीं हूं वहां अंधेरे होंगे, वहां उजाले नहीं हो सकते। और जाहिर है कि आपको चिराग तो है नहीं, कोई सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, इसका मतलब रूहानी यह है कि अगर मैं हूं तो तुम्हारी जिंदगी में तारीकी नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि तारीकी के साथ खौफ का पहलू उभरता है। आपको डर तारीकी से लगता है, रोशनी से नहीं जाते हुए। लेकिन एक जो खतरनाक बात है वो आपने एक और भी ये कही कि तुम भी दुनिया के नूर हो। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, तुम भी हो दुनिया के नूर। और मैं जब इस पर गौर करता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है, सच्ची बात आपको बताऊं। अगर यहां पे जैसे अंधेरा था ना, अगर उस वक्त खुदा ना खास्ता कोई आदमी कलाशनिकोफ लेके आ जाता और यहां पे चला देता, हम में से चंद आदमियों के बच जाने के इम्कान थे, क्योंकि अंधेरे में जहां हमें दिखाई नहीं दे रहा था उसे भी दिखाई नहीं दे रहा था, हम निशाना शायद नहीं बनते। लेकिन जहां आप रोशनी में बैठे हैं, आप बिल्कुल सीधा निशाना है, कि आप टारगेट हैं, वो आप ही को जाके ताक के मारेगा और आपकी चिट्ठी कर देगा। तो इसमें एक दरपर्दा ये पहलू भी था कि मैं रोशनी हूं दुनिया की, लेकिन इस रोशनी में होने की वजह से तुम जो दुनिया के रोशनी हो, नूर हो, तो तुम टारगेट भी हो, लोग तुम्हें सीधा निशाना बनाएंगे, तैयार हो जाओ, मैं तो बन ही रहा हूं, तुम भी बनो मेरे साथ। और मेरा ख्याल है कि हम इसीलिए दुनिया का नूर बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारे अंदर जो छुपा हुआ एक चोर है ना, वो कहता है कि नहीं भाई ऐसी हरकत मत करना, सीधा आके गोली लगेगी, अंधेरे में रहो तो अच्छा है। तो ये कुछ बातें थी।